ओम शांति। मंच पर विराजित परम श्रद्धेय आदरणीय गीता दीदी जी का परिचय देना चाहूंगी। त्याग, तपस्या, सरलता और सादगी की धनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय गीता दीदी जी, आपका जैसा नाम है वैसा ही आपका जीवन है। आपके जीवन में कर्म करते जाओ और फल की इच्छा न रखो। सुख दुख मान अपमान सब में समान रहना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी का सार भी यही है जो दीदी जी के जीवन जीवन से दिखाई देता है। आप 1969 में मात्र 14 वर्ष की कोमल आयु में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। आप अपने विद्यार्थी जीवन में भी अत्यंत मेघावी छात्रा थी। साउथ गुजरात मैट्रिक बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव आपने प्राप्त किया, परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं ने आपको इतना प्रभावित किया कि 1972 में बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही आपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित किया। गुजरात के सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करने के पश्चात लगातार 14 वर्षों तक भावनगर में सब जोन इंचार्ज के रूप में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। 1993 में आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में नवनिर्मित ज्ञान सरोवर एकेडमी में रिसेप्शन, आवास निवास एवं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में 17 वर्षों तक नियमित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान की। साथ ही साथ आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आप विश्वविद्यालय के नियमित राजयोगी विद्यार्थी भाई बहनों, ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनों के सघन प्रशिक्षण प्रोग्राम के भी प्रभावी शिक्षिका है। दीदी जी की वाणी बहुत ही सरल, सारगर्भित और स्पष्ट मन के भीतर तक पहुंचाने वाली है। आप एक कुशल राजयोग एवं स्वप्रबंधन प्रशिक्षिका है। मुख्यालय में विभिन्न विंग्स के जो कार्यक्रम चलते रहते हैं उसमें भी अनेक विषयों पर आप व्याख्यान देते हैं, जैसे कि नारी जागृति, आदिकालीन प्राचीनकालीन संस्कृति एवं उसका आधार आध्यात्मिकता, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इनर वर्ल्ड एंड आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, हार्मनी इन रिलेशनशिप आदि अनेकानेक विषयों पर आप व्याख्यान देते हैं। आपके द्वारा लिखे गए लेख अखबारों, पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। साथ ही साथ दैनिक जागरण, संस्कार एवं आस्था चैनल में आपके प्रवचन प्रसारित होते रहते हैं। भारत के अनेकानेक स्थानों पर आध्यात्मिक मेलों का आयोजन एवं संचालन करने का आपको विशेष अनुभव प्राप्त है। राजयोग शिविर कराने हेतु विशेष निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों में आपका जाना हुआ है। सन 1985 में सोमनाथ से दिल्ली तक चलने वाली भारत एकता युवा पद यात्रा का नेतृत्व भी आपने किया है। 1991 में आपने विदेश यात्रा भी की, जिसमें विशेष रूप से आपने यूएस का भ्रमण किया। 1996 में बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग द्वारा आयोजित मुंबई, इंदौर, कोटा की कार रैली में भी दीदी जी आपने विशेष सेवाएं दी हैं। 2006, 2008 और 2009 में आपने अमेरिका, कनाडा और लंदन का अफ्रीका के 6 देशों व मॉरिशियस की विदेश यात्राएं कर ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग से अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। इसी प्रकार अनेकानेक कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी सेवाओं द्वारा समय प्रति समय आत्माओं को ज्ञान योग से आप भरपूर कराते रहती हैं। तो ऐसी महान विभूति जी के द्वारा आज हम सभी सुनेंगे स्वयं की पहचान, एक्सप्लोरिंग माय स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। तो आज दीदी जी हमें स्व से मिलाने आए हैं, क्योंकि हम पूरे विश्व की अनेक जानकारी जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम स्व को भूले हुए हैं। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय परम श्रद्धेय गीता दीदी जी के द्वारा। सभी तालियों के द्वारा तहे दिल से दीदी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
राजयोग के प्रथम लेसन में हम स्वयं को जानेंगे। बहुत सुंदर गीत सुना, विश्व परिवर्तन तब होगा जब स्व परिवर्तन करेंगे, और स्व परिवर्तन तब होगा जब हम स्वदर्शन करेंगे या स्वचिंतन करेंगे। जरूरत है हमें स्वयं को जानने की। हर इंसान को ये जिज्ञासा होती है कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। हर धर्म में आत्मचिंतन का महत्व दिया गया है। क्रिश्चियन भाई बहने भी कहते हैं कि नो थाई सेल्फ। मुस्लिम भाई बहने भी कहते हैं कि खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। हमारे कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी काव्य लिखा है कि अंतर मम विकसित करो, निर्मल करो, उज्ज्वल करो। वो हमारा आंतरिक स्वरूप क्या है। हम अपने बाह्य शारीरिक स्वरूप को जानते हैं जब हम आपस में मिलते हैं, एक दूसरे परिचित होना चाहते हैं, तो यही हम पूछते हैं कि आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है, धाम क्या है, काम क्या है। हम हरेक से शारीरिक परिचय पूछते हैं। हम अपना शारीरिक परिचय, दैहिक परिचय ही एक दो को देते हैं। अंडरस्टूड है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, शरीर भान में रहते हैं और देह अभिमान में आकर हम अपना जीवन जीते हैं। हम कह सकते हैं कि हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, हमारा जीवन सांसारिक बन गया है। हम अपनी दिनचर्या को भी देखें, हमारा मैक्सिमम टाइम दैहिक प्रवृत्ति में खर्च होता है। हम रोज नहाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम अपना नौकरी धंधा करते हैं। हम कह सकते हैं हमारे 12 घंटे दिनचर्या का 50% टाइम नहाने धोने, तैयार होने में, खाने पीने में और नौकरी धंधे में खर्च होता है। बाकी रहे 12 घंटे, वो भी सोने में अधिकतर खर्च होता है। हमारी दिनचर्या को देखते हुए यही सिद्ध होता है कि हमारा प्रतिदिन का मैक्सिमम टाइम सोने में, नहाने धोने में और दैहिक प्रवृत्ति में ही खर्च होता है। इससे सिद्ध है कि हमारा प्रतिदिन का टाइम दैहिक प्रवृत्ति में, नहाने धोने में और सोने में ही खर्च होता है। अंडरस्टूड है, हमारा जीवन भोगवादी और भौतिकवादी बन गया है। जीवन का वास्तविक ध्येय जो आत्म कल्याण है, उसको हम भूल चुके हैं। तो क्या हमें शांति से सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम शरीर हैं? हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, शरीर भान में रह रहे हैं, देह अभिमान में आकर कर्म व्यवहार करते हैं, पर क्या हम शरीर हैं? शरीर के बारे में हम सोचते हैं कि वास्तव में शरीर क्या है? हड्डी, मांस, चमड़ी और लहू से बना हुआ एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, जिसको विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और पानी, इन 5 तत्वों से ही ये भौतिक दुनिया बनी हुई है और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। जब किसी की मृत्यु होती है हम कहते हैं पंच तत्वम गतः, पांच तत्वों का बना शरीर पुनः पांच तत्व में मिल गया, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल गया। तो शरीर तो तत्वों से बना है, मिट्टी से बना है, शरीर जड़ है, परंतु जब हम मनुष्यात्मा जीवात्मा कहते हैं तो दो अस्तित्व सिद्ध होते हैं, मानव शरीर प्लस आत्मा, ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग मिलाकर ह्यूमन बीइंग मनुष्यात्मा जीवात्मा कहा जाता है। अब मानव शरीर तो प्रत्यक्ष है, तत्वों से बना है, जड़ है, परंतु जो चैतन्य शक्ति आत्मा है वो उसमें से निकल जाती है। तो मानव शरीर प्लस चैतन्य शक्ति आत्मा मिलाकर ह्यूमन बीइंग मनुष्यात्मा कहा जाता है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच, मस्तक के बीच रहती है और हम कह सकते हैं कि मस्तक में रहकर मनुष्यात्मा इस शरीर का संचालन करती है, पूरे शरीर के कारोबार को चलाती है। अब शरीर क्या है? भौतिक शक्ति है। भौतिक शक्ति क्या है और चैतन्य शक्ति क्या है, दोनों में अंतर है। चित्र में बताया है कि भौतिक शक्ति ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जिसके द्वारा हमें प्रकाश शक्ति मिलती है। ये बल्ब प्रकाश नहीं दे रहा है, ये ट्यूब प्रकाश लाइट नहीं दे रही है, पर उसमें जो कोइल है या बल्ब के अंदर जो वायर्स हैं वो प्रकाश शक्ति देते हैं। अब हीटर है जो गर्मी देता है, टीवी है वो हमें दूर के दृश्य दिखाते हैं, तो वास्तव में हीटर गर्मी नहीं दे रहा है, टीवी दूरदर्शन नहीं करा रहा है, पर वो बिजली की शक्ति है जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो ही बिजली हमें प्रकाश देती है, गर्मी देती है और शक्ति के रूप में अनुभव होती है। तो बिजली दिखाई नहीं देती है, वो प्रकाश गर्मी के रूप में अनुभव होती है। तो शरीर देखने में आ रहा है, लेकिन उनके द्वारा चैतन्य शक्ति आत्मा सुन रही हैं, देख रही हैं, कर्म कर रही हैं, धारण कर रही हैं। अब चैतन्य शक्ति क्या है? हम सोचते हैं, विचार करते हैं, वो सोचने की शक्ति को आत्मा कहा जाता है, आत्मा की संकल्प शक्ति कहा जाता है। हमें स्मृति रहती है। अब आप यहाँ आए हैं, माउंट आबू जाएंगे, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आपको स्मृति में संग्रहित हो जाएगा। अब वहां से आप नीचे आ गए, अभी वो दृश्य आपके सामने नहीं है, परंतु देखा हुआ प्राकृतिक सौंदर्य आपकी स्मृति में जो संग्रहित हुआ वो आपको बार बार याद आता है। हमें सुख दुख की इच्छा होती है, हमें सहानुभूति होती है, हम बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हैं, जो कर्म करते हैं इससे संस्कार बनते हैं। तो ये विचार करना, बुद्धि से निर्णय करना, कर्म संस्कार करना, औरों के प्रति सहानुभूति होना, ये सब चैतन्यता की शक्ति है। तो आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये ही आध्यात्मिकता का अर्थ है। अधि प्लस आत्मा मिलाकर अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म का प्रथम सत्य ये है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। अति सूक्ष्म आकार किसको कहेंगे? बिंदु को कहेंगे। आत्मा न ट्रायंगल है, न स्क्वायर है, न षटकोण है, परंतु आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु में आत्मा मस्तक में स्थित होकर कर्म करती हूँ। मैं बांसुरी बजाती हूँ, मैं हाथों से लिखती हूँ, मैं कटोरे में भरकर सलाद खाती हूँ, मैं मोबाइल से बात करती हूँ। तो ये सारे साधन हैं जिनका कर्मेंद्रियों के द्वारा हम उपयोग करते हैं। तो मैं आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, और मस्तक में स्थित होकर कर्म करती हूँ। हम कह सकते हैं शरीर धारण करने के बाद आत्मा मस्तक में स्थित होकर कर्म करती है, जिसका यादगार भक्ति में हम मस्तक के बीच तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं। ये यादगार रस्म हम करते हैं हर धार्मिक प्रसंग पर। हम भाइयों को, बहनों को, बच्चों को तिलक करते हैं। ये आत्मस्मृति की निशानी है। यहाँ हम तिलक नहीं करते हैं, हरेक को आत्मदृष्टि से देखते हैं। अब आत्मा और शरीर की तुलना की गई है कि शरीर एक मोटर कार है, आत्मा उसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति ड्राइवर के समान है। शरीर एक नगरी है, ये गीता में भी कहा है, नौ द्वार वाली नगरी है, दो आंख, दो कान, दो नाक और मुख, ये ऊपर के द्वार से जो पुण्यात्माएं हैं वो ऊपर के द्वार से निकलती हैं और नीचे के द्वार से वो पतित आत्माएं निकलती हैं। तो शरीर एक मकान है, मैं मकान हूं ऐसा हम नहीं कहते हैं, मेरा मकान है, मैं इसका मालिक हूं, मैं एक्टर हूं, वैरायटी एक्शंस करती हूं और शरीर रूपी ड्रेस पहनकर हम वैरायटी रोल्स प्ले करते हैं। शरीर एक रथ है, आत्मा चैतन्य रथी है, रथवान है, आत्मा एक पंछी है, शरीर एक पिंजर है। हम भजन भी गाते हैं, हंसला चलो ने अब इस शरीर रूपी पिंजर को छोड़कर। तो ये आत्मा की तुलना है। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, हम इस शरीर रूपी स्त्री या पुरुष को धारण कर शरीर द्वारा कार्य करते हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, नहीं, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, इसलिए हम कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई है। हम आपस में भाईचारे की, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन जब तक खुद को आत्मा नहीं समझेंगे हम विश्व बंधुत्व या भाईचारे की बात नहीं कर सकते हैं। शरीर तो स्त्री है, पुरुष है, शरीर युवा है, बूढ़ा है या बच्चा है, शरीर छोटे से बड़ा होता है, लेकिन आत्मा वो ही ज्योति बिंदु स्वरूप है। शरीर बढ़ता और घटता है, लेकिन आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप रहते, इसलिए हमें आत्म चिंतन करना है, आत्म भान में रहना है। अब आत्मा किसको कहते हैं? शरीर की पांच कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पांव, आंख, नाक, मुख और कान, ये पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कार्य करते हैं, लेकिन कर्म का प्रभाव आत्मा में संचित होता है। आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार का चैतन्य समूह है। मन का कार्य है आत्मा की संकल्प शक्ति मनन शक्ति और विचार शक्ति को मन कहा जाता है। मन का कार्य है सोचना। मन और बुद्धि आत्मा की चैतन्यता है, इसलिए मन का कार्य है सोचना। जब हम टेंशन में होते हैं, चिंता में होते हैं, भय में होते हैं, तो हमारा विचार स्पीड से चलता है। एक मिनट में हम 40 से 50 विचार कर लेते हैं। तो आत्मा की संकल्प शक्ति को मन कहते हैं। मन का काम है सोचना, विचार करना, कल्पना करना, आइडियाज क्रिएट करना, ये मन का कार्य है। अब हम आवश्यक सोचते हैं, नौकरी, धंधे, परिवार, हेल्थ के बारे में हम सोचते रहते हैं, परंतु कई बार आवश्यक चिंतन भी व्यर्थ चिंतन बन जाता है। इसलिए आवश्यक भल सोचे पर बिन जरूरी अनावश्यक बिगर मतलब की बातें हम न सोचे, उसको कहेंगे व्यर्थ सोचना। हम अवगुणों के वश, विकारों के वश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनका बहुत विस्तार है, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, भय, इन विकारों के वश जो कुछ हम सोचते हैं उनको नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, नकारात्मक विचार कहते हैं। हमारा कार्य है सकारात्मक सोचना, आवश्यक जो कल्याणकारी है वो सोचना है। तो मन का कार्य है अनेक विचार करना, पर आप जानते हैं सभी विचार कर्म में नहीं आते हैं। मन के अनेकानेक विचारों पर आत्मा की निर्णय शक्ति, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। बुद्धि को अगर शुद्ध बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, बुद्धि का दिव्यकरण करना चाहते हैं, तो हमें बुद्धि का योग, बुद्धि का अटेंशन परमात्मा के प्रति लगाना है। हम ही भक्ति में गाते भी थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सदमति दे भगवान। तो परमात्मा जब आते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, जिससे बुद्धि सदमति सत्य बुद्धि बनती है, हमारी बुद्धि का योग परमात्मा से लगता है। तो बुद्धि का कार्य है निर्णय करना, जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है। अब बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं, और बार 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 जो कर्म हम करते रहते हैं वो आत्मा में संचित होते हैं, आत्मा में रिकॉर्ड होते हैं, आत्मा में वो प्रभाव संचित होता है जिसको स्वभाव संस्कार कहते हैं। तो कर्म ही संस्कार बनते हैं, विचार ही कर्म का बीज है, और जो कर्म हम करते हैं वो बार बार फिर वो ही विचार हमें आते रहते हैं। तो जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है वो और कुछ साथ नहीं ले जाती है, वो साथ कर्मों के प्रभाव को ले जाती है। जैसे संस्कार ऐसी आत्मा की गति या तो सद्गति होती है या दुर्गति होती है। तो संस्कार कर्म से बनता है और जो विचार बार बार करते हैं वो ही कर्म में आता है। तो आत्मा मन बुद्धि संस्कार का चैतन्य समूह है। अब आत्मा के ओरिजिनल संस्कार क्या है? हमारे मूल सात गुण धर्म है, इसलिए हमें वो ही चाहिए। हमें जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद प्रेम चाहिए, पवित्रता और ज्ञान चाहिए और शक्ति चाहिए। हमें शांति चाहिए। कोई भी व्यक्ति 24 आवर्स गुस्सा नहीं कर सकती है। गुस्सा करके भी आखिर हम शांत हो जाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल शांति हमारा स्वधर्म है। हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए। हम खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं, क्योंकि हमें जीवन में आनंद चाहिए। हमें प्रेम चाहिए, हमें पवित्रता चाहिए, क्योंकि आत्मा सत्य है, शुद्ध है, इसलिए हमें स्वच्छता पवित्रता जीवन में चाहिए। हमें गंदगी अच्छी नहीं लगती है। हमें विकार अच्छे नहीं लगते हैं। हरेक अपने कर्मों को सत्य बनाना चाहते हैं। हम ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं, अज्ञान मिटाना चाहते हैं। तो ये आत्मा का गुण है। छोटे बच्चों को भी देखा होगा, बड़ों के जूते में चप्पल में अपने पांव डालते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि उसको जानने की सीखने की जिज्ञासा होती है। हमें शक्तिशाली लोग अच्छे लगते हैं, कमजोर कायर नहीं। इसलिए ये सात गुण आत्मा के मूल गुण हैं। जब हम देहभान में आ जाते हैं, खुद को देह समझने लगते हैं, तो हमारे गुण अवगुण बन जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में हम आ जाते हैं। अगर हमें वापस इन गुणों को अपने में विकसित करना है तो हमें खुद को आत्मा समझना है, हमें स्वस्थ बनना है अर्थात स्व में स्थित होना है। अक्सर हम ये सोचते हैं हम कहां से आए हैं, कहां हमें जाना है। हम इस दुनिया में आए हैं 5 तत्वों का बना शरीर धारण कर, इस 5 तत्वों के बने भौतिक जगत में हम कर्म करने आए हैं। इस दुनिया को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। तो 5 तत्व का शरीर धारण कर हम यहाँ कर्म करते हैं, ये भौतिक जगत है। चित्र में सबसे नीचे आसमानी रंग से बताया है कि ये भौतिक जगत है, 5 तत्वों का बना है, सूर्य चांद सितारों से बना है। हमारा असली घर सबसे ऊपर दिखाया है, वो है मूल वतन, जहाँ छठवां अति सूक्ष्म अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। हम इस ब्रह्म तत्व में अपने ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। जैसे फिल्म में 50 एक्टर काम करते हैं पर सभी एक साथ स्टेज पर नहीं आते हैं, वे नंबरवार पार्ट अनुसार आते, ऐसे हम सभी भी परम धाम हमारा घर है और नंबरवार इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं और अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो हमारा घर परम धाम है क्योंकि हम सब आत्माओं के ऊपर परम आत्मा भी रहती है, ज्योति बिंदु परमात्मा भी रहते हैं, इसलिए इस धाम को परलोक ब्रह्मलोक शांति धाम परम धाम कहते हैं। तो ये त्रिलोक बताए हैं, बीच में साक्षात्कार की नगरी है, प्रकाश की दुनिया है। तो वो आत्माओं की दुनिया है, परमात्मा भी वहां रहते हैं, अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म महतत्व हमारा घर है। ये प्रकाश तत्व साक्षात्कार की दुनिया है, मूवी है, वो साइलेंस वर्ल्ड है, ऊंचे ते ऊंचा ये मूवी है, इशारे से बातचीत होती है और सबसे नीचे आसमानी रंग से जो बताया है वो टॉकी वर्ल्ड है, आवाज की दुनिया है। तो हमें याद रखना है हम परम धाम से आए हैं और वापस अब चक्र पूरा हो रहा है, हमें वापस अपने असली घर जाना है। तो ये है आत्मा का चिंतन करने के लिए आत्मा का परिचय, जिस परिचय को याद रखकर हमें आत्म चिंतन करना है। तो सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। हम आत्मचिंतन करेंगे, आप सीधी कमर रख के बैठेंगे ताकि चिंतन का प्रभाव टोटल शरीर की हर कर्मेंद्रियों पर जाए। हमें चिंतन मन और बुद्धि से करना है, मुख से बोलना नहीं है या रिपीट नहीं करना है। मैं आपको गाइड करूंगी कमेंट्री के द्वारा, थॉट्स सजेस्ट करूंगी, वो ही मन से रिवाइज करना है, मुख से रिपीट नहीं करना है। उसका अर्थ समझना है, रियलाइज करना है। यहां मुख से कुछ भी रिपीट नहीं करना है और आंखें नेचुरल खुली रखनी है, आंख बंद करके नहीं बैठना है। जैसे हम बातचीत करते हैं आंखें नेचुरल खुली रहती है। योग माना आत्मा का परमात्मा से मिलन बातचीत, तो हमें मुख से रिपीट नहीं करना है, मन ही मन जो मैं थॉट दूं वो आपको रिवाइज करना है, अर्थ समझना है और उस अनुभूति में, उस फीलिंग में आपको स्थित होना है। एक दो से अलग अलग होकर बैठिए, किसी का भी शरीर टच ना हो, क्योंकि हरेक का अलग अलग चिंतन है। ओम शांति, ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं इस शरीर को धारण करती हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, मैं आत्मा कर्म करती हूँ। मैं आँखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, परंतु मैं आँख नहीं हूँ, कान नहीं हूँ, मुख नहीं हूँ। ये शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, मैं आत्मा मन बुद्धि और संस्कार रूपी तीन शक्तियों से बनी हुई है। मैं शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म करती हूं। मेरे लिए ये दुनिया कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर परम धाम है, जहां मैं अपने ओरिजिनल आत्म स्वरूप में स्थित हूं। मेरे स्वधर्म शांति और पवित्रता है। यहां मैं आत्मा अपने सात गुणों में स्थित रहती हूं। मैं शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद प्रेम स्वरूप हूं। मैं सत्य हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। मैं सत्य ज्ञान, सद्गुण और अपनी आत्मिक शक्तियों से फिर से शक्तिशाली बन जाती हूँ। हमें खुद ही खुद को मन और बुद्धि से सात गुणों को रिवाइज करना है, रियलाइज करना है। और इन गुणों को धारण करना है। मैं आत्मा एक लाइट हूं, एक माइट हूं। मैं शांत हूं, शुद्ध हूं, शक्तिशाली हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।